ये कहानी मेरे चचेरे भाई, मेरी और मेरी सगी बहन की सुहागरात की है। मुझे नहीं पता था कि वो दोनों इतनी हद तक जा सकते हैं। बिना समय गवाए मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। मेरा सभी लंदधारियों और चूतधारियों का नमस्कार। मेरा नाम पंकज है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मैं मेरी दो बहनें सोना और सपना और मेरे माँ पापा रहते हैं। मेरी बड़ी बहन सोना जो बेहद खूबसूरत है, देखने में एकदम परी जैसी। अगर बात करूँ सपना की तो वो भी किसी हूर से कम नहीं। सपना की उम्र 19 साल है, गदराई हुई जवानी, गोल गोल बूब्स, गांध भी किसी खरबूज से कम नहीं है। जब वो चलती है तो लड़कों के लौड़े खड़े हो जाते हैं और उसकी गांध को सलामी देते हैं। कॉलोनी के लड़कों की घूरती नज़र को देखकर यही लगता है कि अगर कोई पा जाए तो कच्चा ही चबा जाए उसे। अगर बात करूं फिगर की तो यही कोई 3-2-3-0-3-2 होंगे, पर जब वो सलवार सूट पहन लेती है तो कहर धाती है। बात करूं अगर इस घटना की तो नवंबर महीने का है, जब मैं घर से जयपुर जा रहा था। मैं आपको बता दूं, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूं। मैं जब जयपुर जाने लगा तो सपना ने मुझसे बोला, भैया मुझे जयपुर घूमना है। तो मैंने बोला तैयार हो जाओ, और मौका देखकर चचेरे भाई ने भी बोला, भैया मुझे भी घूमना है, और फिर साथ में हम दोनों घर लौट आएंगे। तो मैंने भी सोचा ठीक ही है, और मैंने बोला ठीक है तुम भी तैयार हो जाओ। पर मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है वहाँ पर। हम सब घर से निकले तो सपना ने सलवार सूट पहन रखा था जिसमें वो बहुत जच रही थी। हम सब एक घंटे बाद स्टेशन पर पहुँच गए। तभी चचेरा भाई रमेश बोला, भैया रुकिए मैं दवा ले लेता हूँ, मैं कुछ पूछ पाता। तब तक वो चला गया, और मेडिकल से दवा लेते ही वो तुरंत कुछ बैग में रखा और कुछ जेब में। जब वो आया तो मैंने पूछा तो वो दवा दिखाया जो दस्त की थी। फिर मैंने उससे पूछा बैग में क्या रखा तो वो डर कर बोला, भैया कुछ तो नहीं। और फिर सपना बोली, चलो ना भैया, ट्रेन आने वाली है। हम जब प्लेटफॉर्म पर आए तो मैंने गौर किया, हर कोई मर्द मेरी बहन को हैवान की नज़र से देख रहा था। फिर ट्रेन आ गई और हम सब बैठ गए। पर दिक्कत की बात ये थी कि उनके अचानक तैयार होने से हमारा केवल एक ही सीट कन्फर्म था, और रात होने की वजह से उनको सोना भी जरूरी था। तो मैंने सपना को बोला, तुम ऊपर जाकर सो जाओ। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि रमेश भी झपकी ले रहा था, तो मैंने उसे भी भेज दिया। वो भी जाकर सपना के साथ सोने लगा, पर मुझे क्या पता वो बहुत गंदा है। कुछ देर बाद मुझे भी नींद आने लगी तो मैं भी सोने की सोचने लगा। तभी मैंने देखा कि कंबल के अंदर कुछ तो हलचल थी। तभी अचानक सपना आई करके चिल्लाई, वो दोनों शायद कुछ तो कर रहे थे। पर मैंने दो बार जब आवाज़ दी तो वो फिर उठे। मैंने पूछा क्या हुआ तो सपना बोली, भैया मुझे नींद नहीं आ रही, तो वो नीचे आ गई। मैंने देखा उसके कपड़े कमर से ऊपर उठे थे, तो फिर भी मैंने शक नहीं किया क्योंकि भाई बहन जो थे। फिर रात को हम सब जयपुर पहुंच गए, और फिर हम सब मेरे फ्लैट की ओर निकल गए जो 2 BHK था, जो स्टेशन से कुछ दूरी पर था। हम वहां पहुंचने के बाद आराम करने के लिए सोने लगे और बातें करते करते सो गए। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो मुझे ऑफिस जाना था, तो मैं जल्दी उठा और नाश्ता बनाकर खाया और जाने लगा। तो मैंने देखा कि अभी तक सपना और रमेश नहीं उठे हैं। फिर मैंने सोचा कि सोने देते हैं, थके होंगे। फिर सोचा जाने से पहले उठा देता हूँ। तो मैंने जब दूसरे रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि रमेश और सपना दोनों एकदम दोनों चिपक कर सोए थे, और रमेश का एक पैर सपना के दोनों पैरों के बीच में था, और एक हाथ सपना के बूब्स को जकड़े हुआ था, और कंबल बैग से नीचे गिरा था। फिर मैं ये सोचकर कुछ नहीं बोला कि रात में ठंड लगी होगी तो ऐसे सो गए होंगे, और यहीं पर मैंने गलती कर दी। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मेरे फ्लैट से चोरी हो गई थी, तो मैंने हिडन कैमरे लगवाए थे बस बाथरूम को छोड़कर। फिर मैं ऑफिस चला आया और मेरे पैरों तले जमीन तो तब खिसकी जब मैंने कैमरे को अपने मोबाइल से ऑपरेट करना स्टार्ट किया, तो बीती हुई रात का नज़ारा देख के रोंगटे खड़े हो गए, जिसमें सपना लेटी हुई है और रमेश उसे किस कर रहा था और उसके बूब्स स्मूच कर रहा था। ऐसे करते करते फिर वो सो गए थे। फिर जब मेरा लंच टाइम हुआ तो मैंने फिर मोबाइल में देखा तो सपना नहीं दिख रही थी, शायद वो बाथरूम में होगी। और मैंने देखा रमेश भी बाथरूम में गया, अब अंदर वो दोनों क्या किए पता नहीं। पर जब कुछ देर बाद सपना बाहर निकली तो उसके पीछे रमेश भी निकला अंडरवियर में, और पीछे से सपना को पकड़ लिया और बूब्स को दबाने लगा। और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे में खोने लगे और ऐसे करते करते दोनों के एक एक कपड़े उतरते गए। अब दोनों ने साउंड से गाना बजाया और एक दूसरे से लिपट कर एक दूसरे को किस करने लगे। और धीरे धीरे करके दोनों इतना खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो दोनों बिस्तर पर कब लेट गए। इधर मेरी भी हालत खराब हो रही थी सपना के छरहरे बदन को देख देख कर। मेरा मन यही कह रहा था अगर सपना को यही चाहिए था तो मुझसे क्यों नहीं बताए। फिर मेरे मन में उसके साथ संबंध बनाने का ख्याल आने लगा और मैं यही सोच रहा था कि सपना को सबसे पहले मैं चखूं। पर उसके लिए तो रमेश को रोकना था, पर बात कुछ ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी, बस रमेश के लंड को सपना के छूत का दर्शन करना ही बाकी था। तभी मैंने देखा कि रमेश कामुक होकर सपना को दूध को पीने लगा और सपना के उत्तेजना को बढ़ाने लगा ताकि चुदाई के समय वो उसका भरपूर साथ दे। सपना भी अपे चरम सीमा पर आ चुकी थी। वो रमेश के लंड को पकड़कर अपने छूत के पास लाना चाह रही थी, पर रमेश भी था कमीना। वो सपना को तरसा रहा था ताकि उसकी चुदाई मनचाहे तरीके से करे। अब बारी आ चुकी थी लंड और छूत के मेल होने का, तो मैंने देखा रमेश ने अपने बैग से कॉन्डोम निकाला और पैकेट फाड़कर अपने लंड पर चाने लगा। तब मुझे समझ आया कि दस्त तो एक बहाना था, असली मकसद तो कॉन्डोम लगाकर सपना को चोदना था ताकि किसी को पता ही ना चले। जब रमेश अपने लंड पर कॉन्डोम लगाने लगा तो मैं समझ गया कि अब सपना चुद जाएगी, और मैंने जो सोचा है सपना को सबसे पहले चोदने का, वो धरा का धरा रह जाएगा। मैंने तुरंत रमेश को कॉल किया पर उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। फिर मैंने देखा वो सपना की मोबाइल भी बंद करने वाला था, तब तक मैंने कॉल कर दिया। सपना फ़ोन उठाई, मैंने बोला क्या कर रहे तुम सब, तो वो डर कर बोली कुछ नहीं भैया, हम दोनों मूवी देख रहे हैं। और फिर मैंने रमेश से पूछा तो वो बोला हाँ भैया हम दोनों मूवी देख रहे हैं। मैंने मन में कहा शाम को तुम सबकी मूवी हम दिखाएंगे। मैंने फिर देखा वो दोनों इतना उत्तेजित थे कि रुकने वाले नहीं थे। फिर तुरंत मैंने बोला तैयार रहो मैं आ रहा हूँ, घूमने चलते हैं। तो रमेश बोला भैया आज हम दोनों का घूमने का मन नहीं है, कल चलेंगे, आज रहने दीजिए। मैं समझ चुका था कि अगर मैं रुक गया तो आज सपना कच्ची कली से महिला बन जाएगी। मैंने बोला मैं आ गया हूँ, 10 मिनट लगेंगे। तो वो दोनों डर गए और कपड़े पहनने लगे। फिर मैं 1 घंटे बाद आया तो सब नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर रात हो गई और हम खाना खाए। जब दोनों सोने जाने लगे मैं समझ गया रात में ये चुदाई जरूर करेंगे, क्योंकि उनके चेहरे पर वो उत्तेजना दिख रही थी। मैंने सपना को बोला मेरा एक काम है यही कर दो, तो वो मेरे रूम में आई और मैंने उसे जो काम दिया उसे खत्म करते करते रात के 1 बज गए। फिर मैंने काफ़ी बनाई और उसमें जोश की एक गोली डाल दी और मैंने और सपना ने दोनों ने पिया। पर रात होने के साथ साथ ठंडी बढ़ रही थी, मैंने बोला यहीं पर सो जाओ। और जब वो सोने लगी तो उसका जिस्म जोश बढ़ने के साथ कब्जे में नहीं था और वो मुझे कसकर जकड़ने लगी। मैंने भी मौका देखते ही उसको पकड़ लिया। उधर रमेश सपना का इंतजार कर रहा था, पर उसे क्या पता कि सपना आज मेरे साथ सुहागरात मनाने वाली है। अब मैंने सपना को किस करना स्टार्ट किया तो सपना मुझसे अलग होने लगी। फिर मैंने उसके बूब्स पर हाथ रख दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब वो जाती तो जाती कहाँ, क्योंकि अभी सुबह की कसर अभी बाकी थी और वो गर्म होने लगी। मैंने भी टाइम ना खराब करते हुए अपने कपड़े निकाल दिए और धीरे धीरे करके सपना के भी उतार दिए। अब हम दोनों नंगे कंबल के अदर जिस्म की भूख मिटाने को तड़प रहे थे। तभी अचानक से सपना ने कहा अब मत तड़पाओ भैया, अब डाल भी दो ना, वैसे भी सुबह कुछ नहीं हो पाया। मैं जानते हुए भी पूछा सुबह क्या हुआ था, तो वो बोली भैया कल रात से रमेश मेरे पीछे पड़ा है, रात में किस भी किया था और सुबह वो बाथरूम में घुस गया था और साथ में नहाया, बूब्स को पिया, फिर मैं खो चुकी थी। हम दोनों चुदाई करने ही वाले थे कि आपका फ़ोन आ गया। मैंने बोला अच्छा, तो मुझसे बताया भी नहीं, और मैं हंसने लगा और कहा मुझे सब पता है, मैंने कैमरे में सब कुछ देखा है, तभी फ़ोन किया था, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद सबसे पहले मैं चोदना चाहता था। तभी सपना बोली भैया अब डाल दो प्लीज़। तो मैंने भी ना कुछ सोचा ना समझा, अपना लंड उसकी छूत पर टिकाया और थोड़ा सा दबाया, पर छूत बहुत टाइट होने की वजह से मेरा 2 इंच मोटा लंड फिसल गया। पर मैंने फिर से टिकाया और एक जोरदार धक्का मारा और मेरा आधा लंड छूत के अंदर था। तभी सपना बहुत तेज चिल्लाई और रोने लगी, पर तुरंत मैंने उसे लिप किस करने लगा और धीरे धीरे धक्के लगाने लगा, पर उसके दर्द अभी खत्म नहीं हुए थे। तब तक मैंने एक जोरदार धक्का मारा और मेरा 8 इंच लंबा लंड सपना की छूत को फाड़ते हुए उसके बच्चेदानी से जा टकराया। और इस बार वो ज्यादा तेज चिल्ला दी, शायद रमेश भी जग गया था। फिर मैं उसके बूब्स को पीने लगा और उसके साथ रोमांस करने लगा ताकि उसका दर्द कम हो जाए, और धीरे धीरे करके वो भी मेरा साथ देने लगी। अब तो पूरे कमरे में केवल कामुकता भरी आवाजें थी। वाह वाह, ये ओ माई गॉड, फक मी मेकी कम हुई आ। अब वो मेरे लंड पर बैठकर उछलने लगी, उसके बाल खुले थे। उसके दूध हवा में बाउंसिंग बाल की तरह उछल रहे थे और पूरे कमरे में अच फुच फुच पच पुच की आवाजें आ रही थी। हम दोनों एक दूसरे में इतने खो गए थे कि हमें पता भी नहीं था कि हमें कोई देख रहा है। हम दोनों चरम सीमा पर थे, ऐसा लग रहा था कि हम अलग ही दुनिया में हैं। और तभी सपना के शरीर में कर्ट सा दौड़ने लगा, वो झड़ने वाली थी। उसने मुझे बहुत तेज कसकर जकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा और मैं उसके बूब्स पीने लगा। तब तक फव्वारे की तरह उसकी छूत ने पानी छोड़ दिया और वो मुझसे लिपट कर लेटने ही वाली थी कि मैंने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि मैं भी झड़ने वाला था। तब तक मैंने दरवाजे की ओर देखा कि रमेश हम दोनों को देख रहा था और मैं उसे देखते ही ये भी भूल गया कि मैंने कॉन्डोम नहीं पहन रखा था। मुझे सपना अपनी तरफ खींच रही थी और पूरा साथ दे रही थी। तब तक मैं अपने चरम सीमा पर था और अचानक से मैं कुछ समझ पाता कि उसके पहले ही मैंने सपना की छूत में एक जोर का धक्का दिया और मैं उसके ऊपर ही लेट गया। मैंने अपना पूरा माल अपनी बहन की छूत में डाल दिया था और वो बहुत खुश नजर आ रही थी। पर जब उसे याद आया कि मैंने अपना माल उसकी छूत में डाल दिया तो वो रोने लगी। फिर मैंने उसे बहुत समझाया, फिर वो चुप हुई और फिर मैंने रमेश को भी समझाया कि किसी को मत बताना। पर वो बोलने लगा, मैं भी चुदाई करूंगा, तो मैंने मना कर दिया। फिर वो बोला कि मैं सबको बता दूंगा, तो मैंने उसे सुबह का वीडियो दिखाया तो वो मान गया और बोला, भैया केवल किस करूंगा प्लीज। उसने सपना को किस किया और हम तीनों एक ही बेड पर सो गए। दूसरे दिन सपना सही से चल भी नहीं पा रही थी और बोली, भैया पूरी बॉडी में पेन हो रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मसाज कर दूं और मैंने सपना की पूरी बॉडी मसाज किया। अब वो ठीक है। फिर दूसरे दिन हम उसे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने दवा दिया और फिर उसे जयपुर घुमाया और हर रात हम दोनों रोमांस करते। एक हफ्ते बाद उसे घर छोड़ने गया ताकि रमेश रास्ते में उसकी चुदाई न कर दे। और घर जाने के बाद हम दोनों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी रहती थी। फिर एक दिन हम दोनों खेत में गए और वहां मौके का फायदा उठाकर फिर से चुदाई की।